ये आकाशवाणी है। अब आप मुद्रता से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी रैली में कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि अमरावती में वस्त्र पार्क कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री मोदी ने नांदेड़ में एक अन्य जनसभा में कहा कि पिछले ढाई वर्ष में मराठवाड़ा क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश देखा गया है। उन्होंने क्षेत्र में 11 सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख किया। नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव विधानसभा चुनाव के साथ ही 20 नवम्बर को होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता राज्यभर में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पलामू के छतरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर श्री राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीतियों की आलोचना की और कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गरीबों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का समर्थन करता है। उन्होंने धनबाद के बागमारा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल संविधान ही दलितों और गरीबों के हित सुरक्षित रख सकता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पलामू के विश्रामपुर में एक जनसभा में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झूठे वायदे कर रहे हैं और राज्य के लोगों को ठग रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की निंदा की और कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए बहुत काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वाम दलों ने भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की। राज्य की 81 सीटों वाली विधानसभा के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि विकसित राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने में शोध और नवाचार मुख्य तत्व हैं। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शोध और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्र का उच्च स्तर वैश्विक समुदाय के बीच उसकी स्थिति परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को शोध और नवाचार के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। श्री धनखड़ ने कॉरपोरेट जगत से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने को भी कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में निवेश समाज सेवा का महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे मानव संसाधन समृद्ध होता है और वर्तमान तथा भविष्य सुरक्षित बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वास्तव में समाज सेवा है। जोर देकर उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को व्यापार के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि ये एक कर्तव्य है। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। इनमें से 2 संस्थानों का नाम शीर्ष 50 में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को 44वां और IIT बॉम्बे को 48वां स्थान प्राप्त हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि ये उपलब्धि महाद्वीप में भारत की उच्च शिक्षा में प्रगति को दर्शाती है। भारत के पंकज अडवाणी ने दोहा में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 150 अप प्रारूप के फाइनल में आज पंकज ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराया। भारतीय टीम हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।